और सुनाए आज आप सबका क्या हाल है? खुदावन की तारीफ हो, खुदावन का शुक्र हो कि उसने आज का फिर दिन हम सबको बख्श दिया कि उसके हजूर झुकें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम की हम्द और सताइश गाएं। जैसे आपने कहा जबूर 19 को गाते हुए कि खुदावन का कलाम जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक, आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी कुदरत, उसके जलाल, उसकी शफकत और उसके रहम को बयान करता है। चांद सितारे खुदावन की हम्द और खुदावन का पैगाम बनी नौ इंसान तक फैलाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो के ना कि सिर्फ खुदा चांद सितारों के वसीला से कलाम करता है, बल्कि अब उसने हमें अपना कलाम, जिसे बाइबल मुकद्दस कहते हैं, दी है कि हम उसकी अकल को जान सकें, कि हम उसके कलाम से वाकिफ हो सकें, कि हम खुदा की मोहब्बत के बारे में जान सकें, कि हम उन तमाम नेमतों के बारे में जान सकें जो खुदा ने बनी हुई इंसान को दी हैं। सो आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और उन नेमतों, उन बरकतों और उन अजीम बातों के बारे में सीखें, सच्चाइयों के बारे में सीखें जो इंसान की अकल और सोच से बाहर है। और सिर्फ खुदा पाक रूह की रहनुमाई में, रूहुल कुद्दस की कुदरत में ही हम समझ सकते हैं। सो आए उस खुदा के हजूर झुकें। खुदा बाप, तेरे हजूर आते हैं, तेरी बातें जो अक्ल और समझ से बाहर हैं और इंसान अपने जोर, अपनी हिकमत से उसे समझ नहीं सकता, क्योंकि तू बयान से बाहर है, क्योंकि तू समझ से बाहर है। जब तक समझ तेरी तरफ से ना दी जाए, हम तेरे प्यार को, तेरी सच्चाई को समझ नहीं सकते। तो खुदा बाप, आज जो कुछ भी हम तेरे कलाम में सीखें, हम सब के लिए बरकत और भलाई का बायस ठहरे और इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि अपने बच्चों, अपने पड़ोसियों, शहर के लोगों और दूसरों तक तेरी अजमत को बयान करने वाले बने। आज के कलाम के हिस्सा को ले, हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से एफसियों के नाम पालूस रसूल का खात, आज हम उसकी 18वीं आयत को शुरू करेंगे। और इससे पहले कि हम 18वीं आयत को शुरू करें, मैंने आपको 17वीं आयत में से सिखाया था कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, यीशु मसीह के साथ हमारा अजीब अनमोल रिश्ता है। और कल हमने इसी बात को सीखा था, गुजरे हुए दिन में हमने इसी बात को सीखा था कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, यीशु मसीह के उस प्यार के वसीला से, यीशु मसीह ने जो खुदा बाप की फरमा बरदारी की, उसके वसीला से हमें खुदा तक पहुंच हासिल हुई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो वाहद रास्ता हूँ जो जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, खुदा की तरफ लेकर जाता है। और आपको याद होगा कि हमने जिक्रिया की जिंदगी में से वो कहानी सीखी, जिक्रिया की जिंदगी में उस बात को सीखा कि जब जिक्रिया का दिन आए कि वो कहानत का काम अंजाम दे, कहानत की खिदमत करे, काहिन के तौर पर, पुजारी के तौर पर, खिदमत गुजार के तौर पर, खुदा की परस्तिश करने वाले की हैसियत से खुदा के हजूर हाजिर हो अपनी बारी पर, अपने वक़्त पर, तो वो खुदा के मकदस में गया। उसने खुदा की इबादत की, खुशबू जलाई और हमने देखा लूका 2 बाप उसकी 8 और 10 आयत में कि काहिन वहां पर क्या कर रहा था, उसका क्याम काम क्या था, उसका पेशा क्या था, वो क्या करता था खुदा के हजूर। वो कुर्बानी चढ़ाते थे, वो शुक्रगुजारी के नजरे नजराने उसके हुजूर पेश करते थे और दूसरी बहुत सी बातें। और हमने देखा कि काहिन खुदा के पाक मकान में, मकद्दस घर में, हैकल में मौजूद है खुदा के हुजूर, और बाकी तमाम लोग बाहर खड़े हैं। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो पुराना अहदनामा ऐसी बातों से भरा पड़ा है कि काहिन ही खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजारने के लिए जाता था और बाकी लोग बाहर रहते थे। आपको याद होगा मिसाल के तौर पर मूसा का दौर, कि मूसा ही पहाड़ पर गया और खुदा से बातचीत की और खुदा से हुक्म लेकर आया। कोई ना कोई पुराने अहदनामा में हमें पूरे पुराने अहदनामा में यही बात नजर आती है कि खुदा का मुकरर किया हुआ शख्स खुदा के हजूर जाता था और खुदा उससे बात करता था। नबियों को देख लें, काहिनों को देख लें, वहां पर नबुवत करने वाले लोगों को देख लें कि खुदा से वो कलाम लेते और दूसरों तक पहुंचाते। लेकिन आज हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से क्या हुआ? वो पर्दा, वो दूरी, वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान में थी, वो खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के वसीला से दूर हुई। आप बहुत मुबारक लोग हैं जो इस दौर में पैदा हुए हैं, इस दौर के लिए, इस वक्त के लिए। बहुत से नबियों की ख्वाहिश थी, बहुत से रासबाज लोगों की ख्वाहिश थी कि वो यीशु मसीह की बातों को सुनते, कि यीशु मसीह का कलाम उनके हाथों में होता। उस वक्त खुदा नबियों के वसीला से, फरिश्तों के वसीला से, आसमान के सितारों, चांद सितारों के वसीला से कलाम करता था, जैसे आपने जबूर 19 में पढ़ा कि चांद और सितारे उसकी बढ़ाई करते हैं और उसका कलाम बोलते हैं। उस वक्त बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं थी, लेकिन खुदा अपने नबियों के वसीला से, काहिनों के वसीला से, फरिश्तों के वसीला से बोलता था। इसलिए आप बहुत अजीम वक्त में पैदा हुए हैं। क्यों ये बात आप तक पहुंचाने की जरूरत है? मुझे पता है आज बहुत दफा कलीसियाओं में सिर्फ पुरानी कहानियां ही पढ़ी जाती हैं। पिछले दिनों में एक नौजवान आया और उसने कहा कि मैं गिरजे में जाता हूं, लेकिन वही पुरानी कहानियां दोहराई जाती हैं, कोई नई बात नहीं सिखाई जाती। ये बेशक नई बातें हैं, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है कि आप इसे जानें। मेरे साथ एक हवाला देखें, मिसाल के तौर पर मत्ती की इंजील उसका 27वां बाप। लूका की इंजील में हमें देखा कि काहिन जिक्रिया क्या है, खुदा से बात कर रहा है और लोग बाहर खड़े हैं मुकद्दस हैकल के। और यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, जब यीशु मसीह ने निजात के काम को मुकम्मल किया, जब यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर दिया, खुदा के कहर को ठंडा कर दिया, हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, हमारी जुदाई जो हमें सामना करनी थी, खुदा ने उस जुदाई का, उस गुनाह का मजा चखा, ताकि हम उस जिंदगी को, ताकि हम खुदा के साथ रफाकत हासिल कर सकें। मत्ती की इंजील 27 बाप उसकी 50 आयत को मेरे साथ देखें। ये क्यों आप तक पहुंचाने की जरूरत है इन सच्चाइयों को? ताकि आप आजादी के साथ, जैसे यीशु मसीह कहता है, मैं ऐसे परस्तार ढूंढता हूं जो रूह और सच्चाई से मेरी इबादत करें, दलेरी के साथ मेरे सामने आए। मत्ती की अंजील 27वां बाप उसकी 50 आयत में क्या लिखा है? यहां पर यीशु मसीह सलीब पर है और यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। ये आप सबको वाकया याद होगा कि यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, तमाम काम को मुकम्मल कर दिया, सब एक एक बात जो खुदा चाहता था उसने पूरी की। और फिर 51 आयत को देखें क्या लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लरजाई और चट्टानें तड़क गईं। यहां पर क्या मतलब है? पुराने अहदनामा में हमें वाजह तौर पर मिलता है कि जो पर्दा हैकल के दरमियान था, हैकल के अंदर था, उसे पाक तरीन मकान के बीच में था, और काहिन उस पर्दे के पीछे जाता था, वहां पर कुर्बानी चढ़ाता था। यहाँ पर सादा सा जो मफहूम है कि यीशु मसीह ने जब अपनी जान दे दी, खुदा और इंसान के दरमियान जो दूरी थी, सिर्फ और काहिन ही खुदा के हुजूर जा सकता था। जैसे हमें पुराण नए अहदनामा में मिलता है, जितने भी रब्बी थे, जितने भी मजहबी रहनुमाए थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि हमारे ही पास सच है, हम ही को सबको हक हासिल है, तुम खुदा के हुजूर नहीं जा सकते। सो जब यीशु मसीह ने, हमारे खुदावन खुदा ने अपनी जान दी, तो उसने ये दीवार को मिटा दिया, इस दूरी को दूर कर दिया, और इसीलिए हैकल का पर्दा फट गया। हैकल का पर्दा फट गया, वो जो खुदा का जलाल सिर्फ काहिन और नबी पर जाहिर होता था, अब हर एक बनी नू इंसान के अंदर आ गया। इसीलिए पालूस रसूल कहता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, वो जलाल जो हैकल ही में नजर आता था, वो जलाल जो बियाबान ही में जाहिर होता था, वो जलाल जो झाड़ी में जलते हुए मूसा पर, झाड़ी जलती जलती झाड़ी पर, झाड़ी में के वसीला से मूसा ही पर जाहिर हुआ, आज वो जलाल आप सब के अंदर है। और वो जलाल क्या है? खुदावन की हजूरी। क्या आप इस बात से खुश हैं? खुश होना चाहिए कि अब खुदा आपके अंदर रहता है, अब आपको हैकल के लिए यरूशलम में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा आपके अंदर है, और ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों आपको जानने की जरूरत है? क्योंकि ये खुदावंद के बंदा पालूस रसूल की दुआ है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में, यानी खुदावंद यीशु मसीह का बाप, खुदा जो जलाल का बादशाह है, वो चाहता है कि हम उसके बारे में पहचान हासिल करें, वो चाहता है कि हम हिकमत और दनाई हासिल करें। और ये किस तरह मुमकिन है? रूहुल कुद्दस के वसीला से, और कहता है मकाशवा की रूह बख्शे। इसलिए आज आप सबकी खुदा तक पहुंच है, आप सब खुदा से जब चाहे बात कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको सिखाया कि आप सब अपनी रूहानी हालत में खुदा तक जाने की पहुंच रखते हैं। हर वक्त, ये नहीं कि सिर्फ एतवार के दिन ही, बेशक पुराने अहदनामों में सिर्फ कहा गया था कि सब्बत का दिन पाक माना जाए, लेकिन नए अहदनामा में हर एक दिन खुदा की इबादत का है, हर एक दिन खुदा की परस्तिश का है। इसीलिए हम हर रोज सुबह अपने दिन की शुरुआत इससे करते हैं कि खुदावंद की तारीफ की जाए, खुदा के वादों को याद किया जाए। और अब हम शुरू करेंगे अपनी 18वीं आयत को, और पालूस कहता है अपनी दुआ करते हुए, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। हम इस पर और गहरे तौर पर सीखेंगे। आप सबको याद है, आप सब इससे वाकिफ है, दिल की आंखें नहीं होती। यहाँ पर पालूस रसूल बात कर रहा है हमारी समझें, हमारी समझ, हमारी अकल रोशन हो जाए, हमारी समझ को ऐसी काबिलियत हासिल हो जाए कि हम इस तारीकी की दुनिया में, इस फिक्रों के बादलों में, इन तमाम तरह की परेशानियों में खुदावंद की नज़र से देख सकें, हमारी अकल रोशन हो जाए, ताकि हम उन तमाम तरीकी के झूठों को देख सकें कि सच क्या है, हमारी उम्मीद क्या है, हमारी हालत क्या है, हमारा मकाम क्या है। आप बहुत अजीम लोग हैं, यकीन करें या ना करें, आप खुदा का जिंदा खत हैं, उसकी नुमाइंदगी करने वाले लोग। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो उन पर यह पर्दा अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई भी यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है। मेरे साथ देखें दूसरा करंथियों, तीन बाप, पंद्रहवीं आयत में क्या लिखा है? मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है। किनके बारे में बात हो रही है? पुराने अहदनामे के उन लोगों के बारे में, यहूदियों के बारे में। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावन की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। बहुत से यहूदी आज भी यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मसीह आएगा और निजात देगा, और ये उनके दिलों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। उनकी समझें, उनकी अकलें बंद हैं। लेकिन यहाँ पर पालूस कहता है, लेकिन जब तक उनका दिल खुदावन की तरफ फिरेगा, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, और वो खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। इसीलिए आप आजादी के साथ खुदा के हजूर झुक सकते हैं, आप आजादी के साथ उससे बातचीत कर सकते हैं। बेशक आपको दुआ के चंद एक अल्फाज आते हैं, मेरी दरख्वास्त है, मेरी मिन्नत है, खुदा से बात करने के लिए घबराए ना, झिझके ना। जैसे बीवी अपने खामद को बताती है कि मुझे ये ज़रूरत है, जैसे बच्चा अपने बाप को बताता है कि मेरी ये ज़रूरियात है, मेरी ख्वाहिशात है, वैसे ही हर रोज़ हमें खुदा से बात करने की ज़रूरत है। जैसे आप भाई ताहर के पास जब करियाने की दुकान पर जाते हैं तो आप कहते हैं, मुझे पत्ती, मुझे चीनी, मुझे आटा, मुझे मिर्चें, मुझे ये चाहिए, तो वो आपको मिल जाती हैं। अगर आप वहां पर जाकर खड़े हो जाएं खामोश और कुछ ना कहें तो भाई ताहर किस तरह समझ सकते हैं कि आपको क्या जरूरत है? लेकिन खुदा आपके दिलों को जानता है, खुदा सारी बातों से वाकिफ है, आपकी जरूरियात से, आपकी ख्वाहिशात से, उन तमाम चीजों से वाकिफ है। लेकिन वो चाहता है रिश्ता, वो चाहता है आपसे बातचीत करना, वो चाहता है आपसे सुनना, वो चाहता है कि आप उससे बोलें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। अब यीशु मसीह ने ये रास्ता हमारे लिए तैयार किया है, तो किस लिए किया है? कि खुदा की हजूरी में आए और खामोशी से बैठे रहें? नहीं, बातचीत करने की जरूरत है। ये आपके लिए सबसे बड़ी बरकत है कि काहिन को आपके लिए बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद उससे बात कर सकते हैं अपने टूटे फूटे अल्फाजों में। आप अपनी पंजाबी में उससे बात कर सकते हैं, उर्दू में उससे बात कर सकते हैं, जो भी अल्फाज आप कह सकते हैं आप उससे बोल सकते हैं। खुदा का पाक रूह जो आपके अंदर है, आपकी जुबान को, आपके टूटे हुए अल्फाजों को लेकर खुदा के हजूर कामल तौर पर पेश करता है, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है। सुनना चाहते हैं इस हवाला को मेरे साथ निकालें? मैं खुश हुआ कि आपने ये पूछा। रोमियो 8 बाप उसकी 26वीं आयत। ये बातें हम सब के लिए बहुत ही भलाई की बातें हैं और जानने की जरूरत है। हमारे ईमान के बारे में, यीशु मसीह कौन है, खुदा कौन है, रूहुल कुद्दस कौन है, उसमें हमें क्या कुछ हासिल है, ताकि हम लोगों को बताने वाले बने, ना कि सिर्फ ये कहें पादरी साहब नु पता जी यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दिया जो जी उठे सन ते पता नहीं सी चाहिदा वा, बड़े दिन दे बड़े दिन गिर जे। नहीं, हमें ऐसी हालत में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। रोमियो 8 बाप उसकी 26वीं आयत में क्या कहता है खुदा का बंदा पालूस रसूल? कहता है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है। हर तरह की कमजोरी, बीमारी में बोल नहीं सकते, वो हमारी आहों को, वो हमारी तकलीफ को समझ सकता है। हमारी कमजोरियों में, जैसी भी कमजोरी हो, हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए नहीं आती, जिस तरह हमको दुआ करना चाहते हैं नहीं आती, हमारे पास बहुत दफा अल्फाज नहीं होते, लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी टूटी फूटी दुआ को लेता है और क्या करता है, नहीं जानते मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। शिफायत का मतलब जैसे वकील जज के सामने बार बार पेश करता है मुकदमे को के वो मुजरम जो है वो रिहाई पा जाए, वैसे ही रूल कुद्दस हमारे लिए शिफाय करता है, दुआ करता है, मिन्नत करता है, दरख्वास्त करता है, हमारे टूटे फूटे अल्फाजों को खुदा के हजूर पेश करता है। तो आए हम खुदा के हजूर झुके और इन तमाम बरकतों के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से हासिल है उसका शुक्र करें। और मेरी दरख्वास्त है, मेरी दुआ है कि आप अपने बच्चों तक ये बातें पहुंचाएं, अपने पड़ोसियों तक ये बातें पहुंचाएं, उनको बताएं कि कलामे खुदा के दरिया की, कलामे खुदा की जिंदगी भर बातों का दरिया जारी है, आएं और हम सब उसमें से पिए और नई जिंदगी हासिल करते जाएं। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से आए हुए तमाम बहन भाइयों को जो तेरे मुकद्दस लोग हैं, जिनको तूने अपने बेटे के खून के वसीला से खरीदा है, तेरा शुक्र करता हूँ। आज जो कुछ भी हमने सीखा है तेरा पाक रूह ले और हम सबको उस पर यकीन करने की और समझने की बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।